आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। ये क्लास 10th के साइंस का 15th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में जो सबसे पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अबाउट इकोसिस्टम। सबसे पहले हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? इकोसिस्टम एक कोई भी जगह है नेचर में, ऐसी एक फॉर्मेशन जिसमें उस फॉर्मेशन को करने के लिए वहां पर एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही यूज हुए हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के जो मेंबर्स हैं वो आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं और इनके इंटरैक्शन की वजह से जो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होने के लिए हमें बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग बींग्स भी चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें चाहिए जो कि बायोटिक कंपोनेंट की तरह फंक्शन करेंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट की भी जानकारी हमें चाहिए, रेनफॉल कैसा है उस जगह का, वहां पर टेम्परेचर कैसा है, वहां की सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, वहां पे सॉइल का मिनरल कंपोजिशन कैसा है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और बायोटिक कंपोनेंट के मेंबर्स प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के मेंबर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और ये बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स पर भी डिपेंड करते हैं और इस इंटरैक्शन की वजह से जो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गार्डन है, एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड्स है। और नेचुरल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स है, लेक्स है या फिर ओशंस है, ये सारे के सारे जो है ये नेचुरल है, इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम्स है। अब एक इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए हर एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता होती है। प्रोड्यूसर्स की आवश्यकता होती है, कंज्यूमर्स की आवश्यकता होती है और डिकम्पोजर्स की आवश्यकता होती है। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सन की रेडिएंट एनर्जी को यूज करके, क्लोरोफिल का यूज करके फूड का सिंथेसिस करते हैं। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो हो सकते हैं। तो प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूसर्स की तरह फंक्शन कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली डिपेंड करें या इनडायरेक्टली डिपेंड करें, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर्स दो टाइप के हो सकते हैं। कंज्यूमर्स अगर डायरेक्टली, मेनली दो टाइप के होते हैं लेकिन आप लोगों को चार टाइप के बताए गए हैं, चार से ज्यादा भी होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो पढ़ना है वो चार टाइप के कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ना है। कंज्यूमर्स जो चार तरीके के हैं उनका क्या है? उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अब हम समझते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे कह रहे हैं। अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कोई कंज्यूमर हमारे प्लांट के प्रोडक्ट्स पर तो वो हर्बीवोर कहलाएगा, और अगर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसका मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोर्स को खा रहा है तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड होना कहलाएगा। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं या फिर इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। उसके बाद हमने ओमनीवोर्स के बारे में बात करती। ओमनीवोर्स जो है वो हर्बीवोर की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं, कार्निवोर की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। ओमनीवोर का एग्जाम्पल है क्रो। साथ में हमने पैरासाइट्स के बारे में बात करी थी। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड को प्राप्त करते वक्त दूसरे ऑर्गेनिज्म जिससे वो प्राप्त कर रहे हैं फूड को उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को या फिर डिकम्पोज होने वाले मटीरियल को वापस से डिकम्पोज करके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसका यूज प्रोड्यूसर्स कर पाए, यानी कि मिनरल्स और जो भी सब्सटेंसेस हैं किसी वेस्ट मटेरियल या डिकम्पोजेबल मटेरियल या डेड एनिमल्स के अंदर, डेड प्लांट्स के अंदर, उन सबको डिकम्पोज करके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वापस से उनमें से मिनरल और जो भी यूजफुल चीजें हैं वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं जिनको वापस से प्रोड्यूसर्स यूज कर पाते हैं। तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फूड चेन्स और वेब्स के बारे में पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो हमारी धरती पर मौजूद है, अलग अलग इकोसिस्टम्स के अंदर मौजूद है, ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है? डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, जिसे वो खाता है, जिसके ऊपर वो फीड करता है, इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि उसे भी एनर्जी चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस को कर पाए, अपने एक्टिविटीज को कर पाए, और अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए जो एनर्जी उसे चाहिए वो प्राप्त करता है छोटे ऑर्गेनिज्म से जिन पर वो फीड करता है, जिन्हें वो खाता है। तो बेसिकली ट्रांसफर करने का तरीका है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, जिससे कि फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। फूड चेन का फॉर्मेशन तभी होता है जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो, और इसी एनर्जी का ट्रांसफर होते वक्त ट्रॉफिक लेवल्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोड्यूसर्स जो ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं उसे प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करने वाले जो हर्बीवोर्स हैं वो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टर्शरी ट्रॉफिक लेवल या थर्ड ट्रॉफिक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। इसी तरीके से कम 4 ट्रॉफिक लेवल्स या 5 ट्रॉफिक लेवल्स मैक्सिमम बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल वो 10% लॉ फॉलो करती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी पहुंच रही है वो पहले ट्रॉफिक लेवल का सिर्फ 10% हिस्सा ही पहुंचती है, बाकी की एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है, जिसका यूज नहीं कर पाते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं सन से प्राप्त करते हैं एनर्जी, और सन की सिर्फ 1% एनर्जी ही वो यूज करते हैं टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। फूड का फॉर्मेशन जो प्रोड्यूसर्स करते हैं वो सन की केवल 1% एनर्जी यूज करके ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 1% एनर्जी ही बेसिकली पूरे के पूरे धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अभी तक रखे हुए है, अभी तक मेंटेन किए हुए है। साथ में हमने ये भी देखा था कि जब नेचर में हम देखते हैं तो सिंपल फूड चेन्स नहीं बनते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे फीड कर रहा है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे। हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम के ऊपर मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल की तरह फंक्शन कर सकता है। चिड़िया, अगर कोई बर्ड किसी फ्रूट को खा रही है, पेड़ से किसी फ्रूट को खा रही है, तब वो हर्बीवोर की तरह फंक्शन कर रही है, यानी कि वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का काम कर रही है। लेकिन वही चिड़िया अगर किसी इंसेक्ट को खाती है तो वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल का काम कर रही है, वो कार्निवोर का काम कर रही है। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल का फंक्शन कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नेचर में सिंपल फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करते, फूड वेब्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 258 पर, आप देख सकते हो एक तो आप लोगों को फिगर 15.1 में फूड चेन्स दिखाई गई है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है। पहला वाला फॉरेस्ट का दिखाया, ट्रीज ट्रीज को खा रही है डियर, डियर को खा रहे हैं लायन, तो ये फॉरेस्ट के अंदर होता है इस तरीके का फूड चेन। दूसरा आप लोगों को दिखाया गया है कि ग्रास लैंड में, किसी भी गार्डन में या फिर इस तरीके के ग्रास लैंड में किस तरीके का होता है फूड चेन। तो घास फूस है, घास फूस को इंसेक्ट्स ने खाया, छोटे बहुत जो ग्रास हॉपर्स हैं इन्होंने खाया, ग्रास हॉपर्स को खाया मेंढक ने, फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पर 5 ट्रॉफिक लेवल का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैक्सिमम बाय मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये ग्रास लैंड का जो फूड चेन है वो दिखाया गया, सिंपल फूड चेन आप लोगों को दिखाया गया, स्ट्रेट फूड चेन, वेब नहीं दिखाया गया अभी आपको। और पॉन्ड, थर्ड जो सी पार्ट है उसमें देखो फिगर 15.1 में ही पॉन्ड के अंदर किस तरीके का फूड चेन होता है वो दिखाया गया। जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उन प्लांट्स को खाते हैं, जो स्कॉर्पियन है वो खा रहा है, स्कॉर्पियन को किसने खाया, फिश ने खाया, फिश को खा लिया फ्लेमिंगो ने, बर्ड ने। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। आपसे ये फूड चेन इसलिए पूछ सकते हैं कि आपको ब्लैंक दे देंगे कोई, और आपको ये बताना होगा कि उस जगह पर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ट्रॉफिक लेवल का काम कर रहा है। जैसे डियर की आप लोगों को वहां पे ब्लैंक दे देंगे और आपको नाम बताना होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है वो कौन फंक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये फूड चेन्स भी आने चाहिए। उसके बाद देखो फिगर 15.2 पेज नंबर 258 पर ही है। यहाँ पर आप एक ट्राइंगल देख पा रहे हो, एक पिरामिड देख पा रहे हो, और इस पिरामिड के बेस में आप प्रोड्यूसर्स को देख रहे हो, और प्रोड्यूसर्स आपको ये देख पा रहे हो कि जो पिरामिड का बेस है वो ब्रॉड है, चौड़ा है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर्स हमेशा संख्या में ज्यादा होने चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में। ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है नेचर में, यही होता है कि प्रोड्यूसर्स की संख्या ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कई बार एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं जिनके बारे में आप लोग 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से जो पिरामिड है उसका फॉर्मेशन होता है ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स, हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उसके आधार पर एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आप लोगों को पेज नंबर 258 फिगर 15.2 में दिखाया गया। अब यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट आप लोग आ जाओ पेज नंबर 259 पर, आप लोगों को एक फूड वेब दिखाया गया है फिगर 15.3 में। इसमें आप देख रहे हो कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सिंपली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी देख रही है कि एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम पर मल्टीपल लेवल की तरह काम कर सकता है, एक टाइम पर वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की तरह फंक्शन कर सकता है। अगर कोई रैबिट है इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया तो वो कार्निवोर हुआ, रैबिट को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो कार्निवोर की तरह फंक्शन करेगा, और इस तरीके से उस कार्निवोर को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो टॉप कार्निवोर की तरह फंक्शन करेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को देखो दिखाया गया है कि फ्लेमिंगोस जो हैं वो फिश को भी खा सकती हैं, वो फ्रॉग को भी खा सकती हैं, स्नेक्स जो हैं वो रैट को भी खा सकते हैं, बर्ड्स को भी खा सकते हैं और फ्रॉग को भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई दे रही होगी जिससे कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नेचर में सिंपल फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती, फूड वेब एग्जिस्ट करती है, कॉम्प्लेक्स लेवल की हम लोगों को फूड चेन दिखती है और उसे हम फूड वेब कहते हैं। अब अगर आप इस एनर्जी फ्लो के डायग्राम को देखें तो आपको दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं दिमाग में। पहली तो ये कि एनर्जी का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ पर एरो जो बनाया गया है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से बनाया गया, ऑपोजिट लेवल में एरो नहीं बनाया गया। और ऐसा होता भी नहीं है कि किसी बर्ड ने खाया प्लांट्स को और प्लांट्स ने बर्ड्स को खा लिया, इस तरीके का नहीं होता है। तो इसलिए एनर्जी का फ्लो जो है हमारे फूड वेब में या फिर फूड चेन्स में कहीं पर भी यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा होगी, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, हमेशा इसी तरीके से फ्लो होगा, यही डायरेक्शन होगी, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है एनर्जी का। और इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर किया है प्लांट्स ने, ऑटोट्रॉप्स ने, इनको खाया बर्ड्स ने, बर्ड्स को खाया दूसरे ईगल ने। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होगा, प्रोड्यूसर्स फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इस तरीके का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। दूसरी बात हम लोगों को क्या समझ में आती है, दूसरी बात हमें यह समझ में आती है कि जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, तो वह एनर्जी कम होती चली जाती है, इसी वजह से लिमिटेशन है नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स में। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको पढ़नी है वो ये है कि एक ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म अपने से छोटे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, उन्हें वो खाता है। ये मैकेनिज्म जो है ये बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए नेचर ने ढूंढा था, नेचर ने ये मैकेनिज्म अपनाया ताकि एक लेवल से, एक ट्रॉफिक लेवल से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी का ट्रांसफर हो सके। लेकिन इंसानों ने यहाँ पर भी एक नुकसान कॉज कर दिया है, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि मान लो क्रॉप फील्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया, हमने एक खेती करी, जैसे धान उगाया मान लो या फिर गेहूं उगाया हमने, और उस गेहूं और धान के खेती के अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ना आए, सॉरी पेस्ट ना आए या फिर कोई बैक्टीरिया ना आए या फिर वीड्स ना हो, तो उसके लिए हमने वहां पर केमिकल्स छिड़क दिए, पेस्टिसाइड्स छिड़क दिए, वीडिसाइड्स छिड़क दिए, फंजीसाइड्स, फंगस ना हो तो फंजीसाइड्स भी छिड़क दिए। इससे क्या हुआ कि ये केमिकल्स हमारे क्रॉप फील्ड्स में पहुंच गए जो पहले नहीं थे, नेचर ने तो कोई केमिकल नहीं डाला था, हमने डाल दिया, हम ह्यूमंस ने डाल दिया। अब मान लो कि बारिश हुई तो जो भी केमिकल्स क्रॉप फील्ड्स में थे ये सारे के सारे केमिकल्स क्या करेंगे, बह करके नदियों में पहुंच जाएंगे या फिर अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही ये केमिकल्स अंडरग्राउंड वाटर में या फिर ये केमिकल्स जैसे ही अंडरग्राउंड वाटर में या फिर रिवर में पहुंच जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये केमिकल्स अब रिवर में वहां के इकोसिस्टम को खराब करने का काम करेंगे। और वो ये कैसे करते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये हर एक चीजें डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, केमिकल्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता ऑर्गेनिजम्स में सपोज नहीं है, तो ऑर्गेनिजम्स के उस फूड चेन के अंदर अब केमिकल्स तो पहुंच चुके हैं, ये केमिकल्स जैसे ही रिवर में पहुंचे, रिवर में पहुंचने के बाद ये प्लांट्स में, रिवर के जो प्लांट्स हैं वहां पर पहुंच जाएंगे, उन रिवर के प्लांट्स को खाया फिशेज ने, छोटे फिशेज ने खाया, तो ये केमिकल्स अब छोटे फिशेज में पहुंच गए, इन छोटे फिशेज को खाया बड़ी फिशेज ने, तो अब ये केमिकल्स बड़ी फिशेज में पहुंच गए क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ये केमिकल्स जो है ये एज इट इज एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचते जा रहे हैं, अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा जाया जाता है तो वो सारा का सारा केमिकल अब दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच गया। छोटे वाले फिश के अंदर केमिकल्स पहुंचे थे, इस छोटी वाली फिश के अंदर केमिकल्स इकट्ठा हो रहे थे, जैसे ही ज्यादा इकट्ठा हो गया तो छोटी वाली फिश को बड़ी फिश ने खाया, तो सारे के सारे केमिकल्स अब बड़ी वाली फिश के अंदर पहुंच गए। अब इस बड़ी वाली फिश को मान लो ह्यूमंस ने खाया, ह्यूमंस की किडनीज भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, केमिकल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स या फिर फंजीसाइड्स या वीडीसाइड्स के इंसेक्टिसाइड्स के केमिकल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये एक्यूमुलेट होता जाता है और धीरे धीरे करके किडनीज की फंक्शन को खराब कर देता है, लिवर की फंक्शन को खराब कर देता है। सिमिलरली दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पर भी ये बहुत बुरा नुकसान पहुंचाता है। और इस तरीके का ये जो फिनोमेना है इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे कोई केमिकल्स जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के द्वारा, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे बॉडी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो पहुंचते हैं तो वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, तो उनका अमाउंट बढ़ता जाता है व्हेन दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये केमिकल्स पहुंच रहे हैं तो ये अक्यूमुलेट होते जाते हैं, इनका अमाउंट बढ़ता जाता है, और सबसे छोटे वाले ट्रॉफिक लेवल में इनकी अमाउंट कम थी और सबसे बड़े वाले ट्रॉफिक लेवल सबसे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में इनकी अमाउंट बढ़ गई, तो मैग्नीफाई हो गया अमाउंट। बेसिकली छोटे वाले ट्रॉफिक लेवल में इन केमिकल्स की अमाउंट कम थी, सबसे बड़े वाले ट्रॉफिक लेवल में इन केमिकल्स की अमाउंट सबसे ज्यादा हो चुकी है, तो बेसिकली जो अमाउंट है वो मैग्नीफाई हो गई है, केमिकल का अमाउंट मैग्नीफाई हो गया, बढ़ गया है, तो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और यही कारण है कि जो फंजीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हमारे वीट के बागानों में डाले जाते हैं, खेती में डाले जाते हैं, या फिर राइस के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, इन सभी के जो खेती में डाले जाते हैं, ये बेसिकली अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं हम। मान लो फ्रूट्स आ गए हैं आपके पास, उन्हें आप धो करके भी रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, उसको आप जैसे ही खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, वो बॉडी के सरफेस पे नहीं होता है, फ्रूट्स के सरफेस पे नहीं होता है, वो फ्रूट्स के केमिकल कंपोजिशन के अंदर घुस चुका होता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 15.3 पेज नंबर 260। इसमें बोला है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड लेवल इन रेडीमेड फूड आइटम्स आर ऑफन सीन दीज डेज एंड सम स्टेट्स हैव बैंड दीज प्रोडक्ट्स डिबेट इन ग्रुप्स द नीड फॉर सच बैन्स। कह रहे हैं कि कई सारे शहरों में जो ये अलग अलग फूड आइटम्स है, रेडीमेड फूड आइटम्स है, जिनके अंदर पेस्टिसाइड का लेवल बढ़ के मिलता है, इनको बैन कर दिया जाता है। तो आप बताइए कि क्या ये बैन ठीक है या गलत है? मेरे हिसाब से ये बैन बिल्कुल ठीक है क्योंकि हर एक जो कंपनी है जो अपना फूड प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में, उन्हें जरूर ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके अंदर इस तरीके के पेस्टिसाइड्स नहीं हो ताकि लोगों को नुकसान ना पहुंचे। अल्टीमेटली लोगों का एम यही होना चाहिए, किसी भी फूड कंपनी का एम यही होना चाहिए कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, और इसके पहले ही इनको अपने फूड प्रोडक्ट्स के अंदर पेस्टिसाइड का लेवल और इंसेक्टिसाइड्स का लेवल चेक करना चाहिए, अगर ज्यादा लेवल मिलता है तो इनको ये प्रोडक्ट्स नहीं बेचने चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन दीज फूड आइटम्स, कुड पेस्टिसाइड्स गो इनटू आवर बॉडीज फ्रॉम दिस सोर्स थ्रू अदर फूड प्रोडक्ट्स टू। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं ये रेडीमेड फूड आइटम्स में जो है वो किस तरीके से पहुंच जाते हैं, कहाँ से आते हैं? तो बेसिकली ये जो रेडीमेड फूड आइटम्स है इनको भी किसी न किसी फूड प्रोडक्ट को यूज करके बनाया जाता है, जैसे मैगी को मैदा यूज करके बनाते हैं, तो मैदे को भी किसी ग्रेन से बनाते हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्रेन है इनके अंदर पहुंच जाते हैं पेस्टिसाइड्स क्योंकि इनको डायरेक्टली स्प्रे किया जाता है। अब ये पेस्टिसाइड्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रैवल करते हैं फूड चेन की हेल्प की वजह से, इसी वजह से अलग अलग जो फूड आइटम्स है उनमें भी पेस्टिसाइड्स पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोला है डिस्कस व्हाट मेथड्स कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का इनटेक कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स ज्यादा ना छिड़के जाएं, कोशिश की जाए कि पेस्ट्स को रिमूव किया जाए मैन्युअली, या फिर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह को कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम केमिकल्स को छिड़का जाए ताकि दूसरी फूड चेन्स के अंदर भी ये केमिकल्स ना पहुंच पाए। और ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लो जो क्रॉप फील्ड से पानी बह करके रिवर्स में पहुंच जाता है, उसके बाद वो रिवर के इकोसिस्टम में भी हर एक फूड चेन के हर एक ट्रॉफिक लेवल में पहुंच जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रॉप फील्ड्स जिनके अंदर पेस्टिसाइड्स छिड़की गई हैं वो पेस्टिसाइड वाली पानी रिवर के अंदर किसी तरीके से ना पहुंचे ताकि रिवर का जो इकोसिस्टम है उसको एटलीस्ट बचाया जा सके फ्रॉम दीज पेस्टिसाइड्स केमिकल्स। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बाकी हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स है, उनका लेवल चेक किया जाना चाहिए हर एक कंपनी के द्वारा जो वो फूड प्रोडक्ट बना रही है। और अगर उसके अंदर पेस्टिसाइड का लेवल ज्यादा है तो हमें वो फूड प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दो क्वेश्चंस भी दिए गए हैं पेज नंबर 260 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। ट्रॉफिक लेवल्स बेसिकली क्या होते हैं, हर एक लेवल एक फंक्शनल लेवल, एक फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। फूड चेन बेसिकली क्या करता है, फूड चेन का फंक्शन है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर करना। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है अपने से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ये ऑर्गेनिजम्स बेसिकली फंक्शनल लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, एक ऐसा लेवल जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो इस लेवल का काम कर सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स का काम प्रोड्यूसर्स ही कर सकते हैं, हर्बीवोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स एक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि एक एग्जाम्पल बताइए किसी फूड चेन का, तो आप ग्रासलैंड का फूड चेन का एग्जाम्पल बता सकते हैं। ग्रास को खाएंगे ग्रास हॉपर्स, ग्रास हॉपर्स को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। तो ये जो फूड चेन है इस तरीके का हम ग्रासलैंड में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ये होता है कि अल्टीमेटली जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वहां से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स ऐसी हैं, जो भी फायदे की चीजें हैं, जो वापस से सॉइल में मिलाई जा सकती हैं, तो डिकम्पोजर्स ही वो काम करते हैं ब्रेक डाउन करने का, उस डेड ऑर्गेनिज्म से वापस से उसके मिनरल्स को सॉइल में मिक्स करने का, ताकि प्रोड्यूसर्स उसे वापस यूज कर पाए और वो फूड चेन के अंदर फिर से ट्रैवल कर पाए। तो डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी फूड चेन के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग को इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस की एक्टिविटीज किस तरीके से इफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को। तो ह्यूमंस की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है बहुत नुकसान पहुंचाती हैं एनवायरनमेंट को। थोड़ी थोड़ी आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है, दो ही बताई गई है, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन की हुई एक्टिविटीज के द्वारा पॉल्यूशन कॉज करती है एनवायरनमेंट में, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और फिर ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ओजोन लेयर डिप्लीशन और वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहले हमें ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड ये पढ़ना है। ओजोन लेयर, ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है O3, यानी कि ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑक्सीजन बनाते हैं तो वो तो हम लोगों के लिए फायदेमंद है, उसका हम यूज करते हैं, हमारी बॉडी को वो चाहिए ताकि हम रेस्पायर कर सकें, हम जीवित रह सकें। लेकिन ये जो O3 मॉलिक्यूल है, तीन ऑक्सीजन एटम से मिला हुआ ये जो मॉलिक्यूल बनता है, ये ओजोन, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है अगर ये लोअर एटमॉस्फेयर में मिलता है तो। यानी कि लोअर एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, और उसके ऊपर हायर एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो अगर ओजोन हमारे ट्रोपोस्फेयर में मिलता है तो ये हमारे लिए पॉइजन का काम करता है, लेकिन अगर यही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है तो ये हमारे लिए वरदान का काम करता है। अंतर क्या है दोनों में, अगर ये ओजोन मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है तो वहां पर ये बेसिकली एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, और ये लेयर एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन मास्क का काम करती है, और ये प्रोटेक्शन मास्क हमें बचाती है यूवी रेस से जो कि सन से निकलती है। सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती रहती है हमेशा, जो कि स्किन कैंसर कर सकती है, आईज खराब कर सकती है लोगों की, अंधा बना सकती है लोगों को, और म्यूटेशंस भी कॉज कर सकती हैं। तो इन सभी चीजों से बचाने का काम ओजोन ही करता है, ओजोन लेयर करता है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है। लेकिन अगर लोअर एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, तो ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन मिलता है तो वो पॉइजन का काम करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करता है, तो इससे हम लोगों को नुकसान होता है। तो इस तरीके से बैड ओजोन और गुड ओजोन होता है हमारे अर्थ में। अब अगर बात करी जाए ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, तो सबसे पहले ओजोन जो ये बनता है, ये बनता कैसे है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर यूवी रेज जो आती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन जितना भी है मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, इस पर यूवी रेज पड़ती हैं और O2 को ब्रेक कर देती हैं इनटू ऑक्सीजन एटम्स। O2 पर यूवी रेज पड़ी और दो ऑक्सीजन एटम्स का फॉर्मेशन हो गया, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन एटम्स बन गई। अब ये ऑक्सीजन एटम, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती है और कंपाउंड बनाती है O3, ओजोन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर एक O2 मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O3 मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम ओजोन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 261 पर आप लोगों को दिखाया गया इक्वेशन लिखी है। O2 पर एरो बना करके यूवी लिखा है, इसका मतलब यूवी रेडिएशन पड़ी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर, जिससे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो गया इनटू ऑक्सीजन एटम्स। अब ये ऑक्सीजन एटम, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके O3 मॉलिक्यूल बनाता है, ओजोन बनाता है। ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूअसली होती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती रहती है, ताकि ओजोन लेयर जो है वो बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है इनटू मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम्स में टूटती भी रहती है और वापस से ओजोन मॉलिक्यूल बन भी जाता है। तो ये ब्रेकडाउन और सिंथेसिस चलता रहता है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1980s में ये इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो गया है। क्यों डिस्टर्ब हो गया है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। यहाँ पर भी जो फाइनली फिंगर्स, अक्यूजिंग फिंगर्स जो है वो ह्यूमंस की तरफ ही हैं, हमारी तरफ ही इशारा किया जा रहा है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो ये ओजोन का लेयर है इसमें एक होल दिखने लगा है। होल दिखने लगा है का इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सही में होल दिखने लगा है, इसका मीनिंग ये है कि हमारी धरती के कुछ रीजन्स में, मेनली अंटार्कटिका में ये देखा गया है कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही पतली हो चुकी है, इतनी पतली हो चुकी है कि वहां पर यूवी रेडिएशंस जो सन से आ रही हैं उनको वो ओजोन लेयर रोक नहीं पाती है, वो डायरेक्टली धरती पर पड़ती है अंटार्कटिका में। और ये कब देखा गया? ये देखा गया साइंटिस्ट के द्वारा जो अंटार्कटिका में काम करते थे 1980s के वक्त में। 1980s के वक्त में एक केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस बहुत जोरों शोरों से हो रहा था, उस केमिकल कंपाउंड का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर क्लोरीन एटम्स होते हैं, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का फॉर्मेशन क्यों किया गया? रेफ्रिजरेंट में ये यूज किए जाते थे, जो आपके फ्रिज वगैरह होते हैं या एसी वगैरह होते हैं, इनको बनाने के लिए यूज किया जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। साथ में एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आग बुझाने के जो केमिकल्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उनमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक कंपोनेंट का काम करता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एक बहुत नुकसान वाली बात यह है कि इनके अंदर जो ये क्लोरीन एटम्स है, अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन क्लोरीन एटम्स को लेकर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाए तो ये क्लोरीन एटम्स कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं आप लोगों को पता है? कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड को ऑल्टर कर देता है, लेकिन वो खुद कभी भी ना घटता है ना उसको कुछ उसमें कमी आती है। तो क्लोरीन एटम्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर हैं, अगर वो किसी कारणवश स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाए तो वो खत्म नहीं होते, और वो क्या करते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, O3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से O3 मॉलिक्यूल्स की संख्या घटती चली जाती है, और ये क्लोरीन एटम्स धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा O3 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है कि वहां पर यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अब धरती पर पड़ती है। ये जब देखा गया 1980s में, तो जो अलग अलग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ कदम उठाया जाना चाहिए, और 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इन्होंने कहा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, इसको अब रोकना होगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की खास बात यह है कि जितना पहुंच चुका है अब तक उसे किसी भी तरीके से आप वापस हटा नहीं सकते हैं, आपने जो डैमेज कर दिया है एनवायरमेंट को उसे आप किसी भी तरीके से वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जो डैमेज हो चुका है उसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हम बस यही कर सकते हैं कि आगे और डैमेज ना करें। तो इसीलिए सभी कंट्रीज को कहा गया था, अग्रीमेंट कराई गई थी कि अब से कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपाउंड्स ना बनाए, ताकि और भी ज्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो ऐड ना होने पाए एनवायरमेंट में, और हमारे एनवायरमेंट को ऑलरेडी जो नुकसान हो चुका है उससे नहीं बचा सकते तो और ज्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। और जितनी भी कंपनीज थी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाती थी, उनको कहा गया कि जो भी आप रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगे, जो भी आप एयर कंडीशनर्स बनाएंगे, उनके अंदर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए जितनी भी लेवल जो बन चुकी थी 1986 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की इन दी स्ट्रेटोस्फीयर, वो तो बन चुकी है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके आगे हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगाया बहुत सारी कंट्रीज ने, और अल्टीमेटली काफी हद तक देखा गया है कि ओजोन लेयर जो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है उससे फर्दर डिप्लीशन को रोकने के लिए ये मेथड जो उठाए गए थे, ये कदम जो उठाए गए थे, ये काफी हेल्पफुल साबित हुए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर एक्टिविटी 15.4 करने के लिए कहा है, पेज नंबर 261 पर। इसमें आपको बोला है फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी इंटरनेट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स व्हिच केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो यहाँ पे आपने एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है, बाकी और भी आप लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो आप लोगों को अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग जो केमिकल्स हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन को, ओजोन लेयर को, उसके बारे में आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पर। ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी और होमवर्क भी हो जाएगा। उसके बाद अगला बोला है फाइंड आउट इफ द रेगुलेशंस पुट इन प्लेस टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ दीज केमिकल्स हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द डैमेज टू द ओजोन लेयर, हैज द साइज ऑफ द ओजोन इन द ओजोन लेयर चेंज्ड इन रीसेंट ईयर्स। तो देखो यहाँ पर ये बोला है कि जो भी मेथड्स अपनाए गए हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोकने के लिए, क्या वो सक्सेसफुल हुई हैं। तो आप लोग जब सर्च करेंगे इंटरनेट पर न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो आप ये होमवर्क करते वक्त आपको पता लग जाएगा कि जितनी भी जो अलग अलग रूल्स लगाई गई हैं, अग्रीमेंट्स करी गई हैं वेरियस कंट्रीज के अंदर, इसने काफ़ी हद तक हेल्प तो किया है, लेकिन जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है एनवायरनमेंट को, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हैं उनको हम किसी तरीके से वापस हटा नहीं सकते हैं। तो जितना नुकसान हो चुका है वो नुकसान तो हो चुका है, बस जो एग्रीमेंट्स करी गई हैं, रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, वो बस इसलिए ताकि और ज़्यादा डैमेज ना होने पाए हमारे एनवायरनमेंट को। और अगर बात की जाए कि ओजोन लेयर जो है उसमें होल अगर उसकी साइज बड़ी है या घटी है, तो ये जो साइज है वो जितना नुकसान हो चुका है तो उतना होल तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये होल और बड़ा ना होने पाए, इसलिए यहाँ पर एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स रखी जाती हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल रखी गई थी 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखी गई थी, उसके बाद 1990 में, फिर 1992 में, फिर 1995 में। आप लोग जब इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी जो ये रूल्स और अग्रीमेंट्स जो है इनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। इससे हम लोग बेसिकली सबका यही एम है कि जो ओजोन होल हो चुका है उसमें और भी ज़्यादा वो और बढ़े ना, ताकि नुकसान जो है हमारे इन्वायरमेंट को वो कम से कम हो पाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो स्ट्रैटोस्फेयर में ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं देखे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है कि डिप्लीशन जो है वो और कम होता जाए और ओजोन होल हो सकता है इन फ्यूचर, अगर लोग अच्छे से जो अग्रीमेंट्स है उसे फॉलो करेंगे, तो ओजोन होल के साइज में कमी देखी जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आपका ये होमवर्क रहेगा, और आपको जो आपने आज पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करना है। आपको कोई डाउट्स हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।